नमस्कार, आज हम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्बोधन पर बात कर रहे हैं, तपकर कुंदन बनने की प्रक्रिया। इसमें एक गहरा सवाल है, मनुष्य इतना समर्थ होकर भी आखिर क्यों गिर जाता है, क्यों भटक जाता है?
हाँ, ये सवाल सच में सोचने वाला है और पूज्य गुरुदेव ने इसे समझाने के लिए ना बड़े ही सरल से उदाहरण दिए हैं।
जैसे
वो कहते थे कि पानी में कमंडलू फेंको तो तैरता है।
हाँ,
लेकिन अगर उसमें एक छोटा सा भी छेद हो, सुराख हो,
तो
वो डूब जाएगा,
पानी भर जाएगा उसमें।
बिल्कुल। या फिर जैसे दूध धोने का बर्तन है, अगर उसमें छेद हो तो सारी मेहनत बेकार चली जाती है,
बिल्कुल
दूध बह जाता है।
तो ये जो सुराख है, ये असल में हमारी अपनी कमजोरियां हैं, हमारे दोष।
एकदम सही। पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये सुराख हमारे जीवन का असंयम है, हमारी बुरी आदतें हैं, हमारी कमजोरियां। ये धीरे धीरे हमारी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, सारे गुणों को खत्म कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे बर्तन से दूध बह जाता है।
और इन्हें बंद करने का तरीका ही तप है।
हाँ, वही तप है। मतलब आत्मानुशासन, संयम का लगातार अभ्यास, पूज्य गुरुदेव ने इसे ही तप कहा है।
तो ये तप कैसे करें, मतलब इसके क्या क्या अलग अलग तरीके हैं, गुरुदेव ने क्या बताया है?
उन्होंने मुख्य रूप से चार धाराएं बताई हैं तप की, चार तरीके इन सुराखों को बंद करने के। सबसे पहली है इंद्रिय संयम, हमारी ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां दोनों पर नियंत्रण।
इंद्रियों में मुझे लगता है जीव सबसे ज्यादा गड़बड़ करती है, एक तो स्वाद का चस्का और दूसरा बोलने का असंयम।
बिल्कुल सही कहा आपने। गुरुदेव ने भी जिह्वा संयम पर बहुत जोर दिया है। पहला पहलू है स्वाद। हम प्रकृति के हिसाब से नहीं खाते, जो मन में आया, जब मन में आया, जितना मन में आया खा लिया। अभक्ष्य भक्षण, ज्यादा खाना,
और फिर बीमार पड़ते हैं।
हाँ, गुरुदेव कहते थे जंगल के जानवर बीमार क्यों नहीं पड़ते, क्योंकि वो प्रकृति के नियम से चलते हैं। पर मनुष्य अपनी जीभ के असंयम से ही ज्यादातर बीमारियां मोल लेता है। तो स्वाद पर काबू पाना पहला तप है।
और जीभ का दूसरा काम बोलना, वाणी का संयम।
हाँ, वाणी का तप, ये भी उतना ही जरूरी है। कड़वे बोल, चुपते हुए शब्द, ये दुश्मन बना देते हैं। उन्होंने द्रौपदी का उदाहरण दिया था, कैसे उसके कुछ शब्दों ने महाभारत की नींव रख दी।
अच्छा, हाँ।
और मीठी वाणी?
मीठी वाणी प्रिय बनाती है, जैसे कोयल सबको अच्छी लगती है।
तो वाणी का तप है विनम्र बोलना, सच बोलना, प्रिय बोलना और उत्साह बढ़ाने वाले शब्द कहना, सोच समझ कर बोलना।
इंद्रिय संयम में और क्या क्या आता है वाणी और स्वाद के अलावा?
एक और बहुत महत्वपूर्ण तप है ब्रह्मचर्य का। और गुरुदेव इसे सिर्फ शारीरिक संयम तक सीमित नहीं रखते थे, यह मानसिक पवित्रता भी है, जैसे कुदृष्टि से बचना, विचारों में पवित्रता रखना।
हाँ, उन्होंने गांधी जी, भीष्म पितामह, हनुमान जी, लक्ष्मण जी के उदाहरण दिए थे ना?
बिल्कुल। उन्होंने बताया कि कैसे इन महान हस्तियों की शक्ति के पीछे ब्रह्मचर्य का बड़ा योगदान था। लक्ष्मण जी का 14 वर्ष का अखंड ब्रह्मचर्य ही तो था जिसने उन्हें मेघनाथ जैसे अजय योद्धा पर विजय दिलाई।
तो इंद्रिय संयम के बाद दूसरा तप कौन सा है, दूसरा सुराख जिसे बंद करना है?
दूसरा और बहुत जरूरी तप है समय संयम। गुरुदेव तो कहते थे समय ही जीवन है, हर पल हर क्षण कीमती है, इसे आलस्य में, टालम टोल में गंवाना मतलब जीवन को ही व्यर्थ करना है।
हाँ, समय का मूल्य समझना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल। अब्राहम लिंकन इतने पाबंद थे कि लोग उन्हें देखकर अपनी घड़ियां मिलाते थे। और विनोबा भावे जी, उन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान ही उस समय का सदुपयोग करके 23 भाषाएं सीख ली। सोचिए जरा,
कमाल है।
गुरुदेव कहते थे काम वही बढ़िया होता है जो पूरे मन से, मनोयोग से किया जाए। जैसे बया पक्षी का घोंसला होता है ना, कितना कलात्मक, कितना साधा हुआ। और कबूतर का घोंसला, बस तिनकों का ढेर। तो हमें बया पक्षी जैसा काम करना है, मनोयोग से, आलस्य और टालमटोल से बचना है।
और तीसरा तप वो धन से जुड़ा है शायद।
हाँ, तीसरा तप है अर्थ संयम, यानी धन का संयम। आज के जमाने में ये शायद बहुत मुश्किल लगता लोगों को, पर गुरुदेव का सूत्र बड़ा सीधा था, ईमानदारी से कमाओ और सादगी से खर्च करो। सादा जीवन, उच्च विचार,
फिजूल खर्ची और दिखावा, ये सब गड़बड़ करते हैं।
बिल्कुल, यही तो पतन के रास्ते हैं। विलासता, झूठा दिखावा, इनसे बुरी आदतें आती हैं, बेईमानी आती है। उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर का उदाहरण दिया, अपनी कमाई का बहुत छोटा हिस्सा अपने ऊपर खर्च करते थे, बाकी सब
परोपकार में।
सच में व्यक्ति की समझदारी उसके खर्च करने के तरीके से पता चलती है।
हाँ बिल्कुल। और मितव्ययता, मतलब सोच समझ कर खर्च करना, ये ईमानदारी का जीवन जीने में भी मदद करता है।
और फिर आता है चौथा और आखिरी तप।
हाँ, चौथा और शायद सबसे गहरा, सबसे सूक्ष्म तप है विचार संयम। हमारे विचारों में बहुत शक्ति होती है, अपार शक्ति, पर अगर वो बिखरे रहें, यहाँ वहाँ भटकते रहें, नेगेटिव हो, तो वो शक्ति बेकार हो जाती है।
जैसे अर्जुन का ध्यान सिर्फ मछली की आंख पर था,
वैसा फोकस।
क्या बात है, बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। गुरुदेव भी यही कहते थे, विचारों को एक लक्ष्य पर केंद्रित करना सीखना होगा। जैसे वो आतिशी शीशा होता है ना, मैग्नीफाइंग ग्लास, वो सूरज की बिखरी किरणों को एक जगह लाता है तो आग लग जाती है।
हाँ।
वैसे ही जब हमारे विचार एकाग्र होते हैं तो वो बड़े बड़े काम कर सकते हैं, महान काम। तो हमें क्या करना है, नकारात्मक फालतू के विचारों को हटाना है, उनकी जगह सकारात्मक सृजनात्मक योजनाबद्ध विचार लाने का अभ्यास करना है।
मतलब बुरे विचारों का इलाज अच्छे विचार है।
हाँ, विचारों का इलाज विचार ही है। जब मन में गलत विचार आए तो तुरंत अच्छे ऊंचे विचारों का चिंतन शुरू कर दें।
तो कुल मिला के पूज्य गुरुदेव ये कह रहे हैं कि तपस्वी होने का मतलब सिर्फ जंगल जाना या शरीर को कष्ट देना नहीं है।
बिल्कुल नहीं, असली तपस्या तो रोजमर्रा की जिंदगी में है। अपनी इंद्रियों को साधना, अपने समय को सहेजना, अपने पैसे का सही उपयोग करना और अपने विचारों को सही दिशा देना, यही वो तरीका है जिससे हम अपने अंदर के वो सुराख बंद कर सकते हैं
और अपनी शक्तियों को बचाकर खुद को तराश कर कुंदन बन सकते हैं।
एकदम सही कहा, खुद को बेहतर बनाने की, अपनी क्षमताओं को निखारने की यही प्रक्रिया है।
तो ये चर्चा हमें एक तरह से आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करती है।
हाँ, और सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे अपने जीवन में कौन से ऐसे छेद हैं, कौन से ऐसे सुराख हैं जिन्हें बंद करने की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। और सबसे जरूरी सवाल, उस दिशा में हम अपना पहला कदम क्या उठा सकते हैं, आज